हम सभी बहुत दूर दूर के स्थानों से इस आध्यात्मिक स्थान पर परमात्मा घर में आए हैं और निश्चित रूप से आप सभी इसी उद्देश्य से आए हैं कि हम जीवन की पुनः खोज करें। प्रश्न उठता है, क्या हम सभी जीवन को नहीं जानते हैं? क्या हमने जीवन की खोज नहीं की है? निश्चित रूप से हम सभी ने लाइफ के बारे में स्टडी की है, डिस्कवर किया है, बहुत कुछ इसे समझा है, जाना है, पहचाना है, लेकिन अब पुनः इसकी खोज की आवश्यकता क्यों है? जिंदगी में हम सभी के सामने एक अहम सवाल आज खड़ा हो गया है। हर कोई यही पूछता है, जिंदगी जी तो रहे हैं लेकिन किस लिए? क्या आपके मन में भी यही सवाल उठता है? या आपसे भी किसी ने यह सवाल जरूर पूछा होगा कि हम जिंदगी जी तो रहे हैं लेकिन क्यों? फॉर व्हाट? फॉर मनी? फॉर पोजिशन? फॉर वर्क? फॉर पावर? फॉर जॉय? फॉर व्हाट? किस लिए? आप बताएंगे सभी, किस लिए जिंदगी जी रहे जी? देखिए, ये हमारा जो सेशन है, इस सेशन में हम आप सभी आपस में बातें करेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ विचार आपके होंगे, कुछ हमारे होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो हम सब जिंदगी जी रहे किस लिए? जॉय के लिए? फॉर जॉय या विथ जॉय? विथ जॉय। निश्चित रूप से हम खुशी के लिए नहीं, परंतु खुशी के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। ये जॉय, ये खुशी। मैं अस्मिता बहन से पूछती हूं कि हम चाहते तो है सभी खुशी के साथ जीना, खुशियों को अनुभव करना जिंदगी में, लेकिन ये खुशी, ये जॉय है क्या? आपके मन में भी सवाल आएगा, आखिर खुशी है क्या?
निश्चित रूप से आज का मानव जिसके लिए खुशी एक सपना सा बन गया है, उसके मन में विचार जरूर चलता है कि क्या ऐसा किया जाए जिससे हम जीवन में सच्ची खुशी, सच्चा सुख, सच्चा आनंद का अनुभव कर सकें। कई बार हम लोगों ने देखा है कि हम कुछ अच्छा अपने पसंद का सीरियल देखते हैं, टीवी में मूवी देखते हैं, तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अपने पसंद की कोई चीज खाते हैं तो भी उस समय अच्छा लगता है। कुछ अच्छे पसंद के गीत सुनते हैं तो भी अच्छा लगता है। परंतु प्रश्न ये उठता है, वो अच्छा लगना, वो फीलिंग ऑफ गुड, वो कितना समय कंटिन्यू करता है? ये हम आप सभी का एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि वो केवल करते समय ही अच्छा लगता है। इसलिए जब हम खुशी की बात करते हैं, जॉय की बात करते हैं, तो दो टर्म आते हैं, एक है प्लेजर और दूसरा है जॉय। प्लेजर ओरिएंटेड हम किसको कहेंगे? प्लेजर हमें तब मिलता है जब हम कोई कार्य करते होते हैं, कर्म करने के दौरान हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मानो हमने अच्छा कुछ देखा, अच्छा कुछ खाया, तो उससे जो हमें प्राप्त हुआ उसे हम प्लेजर कहेंगे। नॉर्मली हम कहते हैं सेंसरी प्लेजर, जो कर्म इंद्रियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, परंतु कर्म करने के बाद वो अनुभूति गायब हो जाती है। परंतु कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कर्म करने के समय भी हमें खुशी होती है और कर्म करने के बाद भी वो खुशी का असर काफी समय तक कायम रहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मानो किसी अंधे को हमने हाथ पकड़कर रास्ता पार कराया, तो कराने के बाद भी ये सोच के अच्छा लगता है कि मैंने आज एक बहुत अच्छा काम किया है। आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, तो जिस समय आपने वो कार्य किया उस समय भी अच्छा लगा और उसके बाद भी हमें अच्छा ही लगता है। इसलिए वास्तव में यदि हम ये जानना चाहें कि जॉय क्या है, तो मुझे याद आता है एरिस्टोटल का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने बहुत सही कहा कि जॉय एकम्पनीज एवरी परफेक्ट एक्ट, यानी किसी भी कार्य को जब हम परफेक्टली करते हैं तो उससे ही हम जॉय को डिराइव करते हैं। मुझे कोई भी काम मिला जैसा तैसा मैं पूरा कर दूं तो मुझे उससे वो आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है, परंतु उसे यदि बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली किया जाए तभी उससे हम जॉय एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
बात तो आपने बिल्कुल सही कही अस्मिता बहन, लेकिन जिंदगी में हम देखते हैं कि जिंदगी तो बहुत रंग बिरंगी है, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव इसमें समाये हुए हैं। कई बातें जिंदगी में चलते चलते ऐसी आ जाती हैं जो कभी उदासी या मायूसी आ जाती हैं, और हम सब चाहते हैं कि वो उदासी वो मायूसी हमारी हट जाए, निकल जाए और हम फिर से उस खुशी को जॉय को एक्सपीरियंस कर पाए। हम कभी नहीं चाहते कि वो उदासी मायूसी एक लंबे समय तक बनी रहे, हम जल्दी से जल्दी उसे मिटाना चाहते और उसके लिए कई तरीके हम अपनाते हैं। आप सबके जीवन में भी कुछ ऐसे अनुभव होंगे कि जब कोई उदासी मायूसी आती है उसे दूर करने के लिए आप सब भी बहुत सारे तरीके अपनाते होंगे। अपनाते हैं तरीके या शांत होकर बैठ जाते हैं, क्या करते हैं, कोई ना कोई तरीके अपनाते हैं, यस और नो? यस। तो कौन से तरीके अपनाते हैं, कुछ शेयर करेंगे? कोई क्या तरीका अपनाते हैं जिससे कि आप उस उदासी को दूर कर सके और जिससे फिर से खुशी का अनुभव कर सके? यस, बताइए। सॉन्ग सुनते हैं, बहुत अच्छा। और जी, ग्रीनरी एरिया जहां प्रकृति का सौंदर्य वहां जाते हैं। जी, भूलने की कोशिश करते हैं, भूलने की कोशिश। यस, सो जाते हैं। कितना अच्छा तरीका है ना, लेकिन जो सो के उठते हैं तो उदासी खत्म हो जाती है। हाँ जी, बुक्स पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके आप सभी। जी भाई साहब, थोड़ा सा पास करेंगे उनकी बात, अपने आप को किसी न किसी रूप में बिजी कर देते हैं। जी हाँ जी जी, फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करते हैं, बहुत अच्छा। और कोई तरीका? एक्सरसाइज करते हैं। जी, लोग शराब पी के अपने गम भुलाते हैं। आप तो नहीं पीते ना? नहीं, कोई बात, फिर बहुत अच्छा है। जी, औरों को खुश करने की कोशिश करते, कितनी अच्छी बात है, तालियां तो बजाइए। हाँ जी, विजिटिंग द सेम पर्सन। जी जी, बाबा से शेयर करेंगे। देखिए ये कह रहे हैं आगे से जब भी दुखी होंगे हम बाबा से शेयर करेंगे। जी, बाहर जाएंगे। जी, वातावरण से दूर जाने की कोशिश करते, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। बच्चों के साथ खेलते, बच्चों के साथ बातें करते। तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने गम भुला सकते हैं। बस लास्ट, ओके, चेंज द थॉट। वही बात है कि चेंज कैसे करेंगे, तो बहुत सारे तरीके आप सबने बताए। हमें भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत अच्छा तरीका सिखाया गया है कि हम गीत सुने, क्योंकि गीत जिसमें बहुत सारे भाव होते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, और गीत एक ऐसी चीज है, कई गीत जो हमारे अंदर उमंग बढ़ाते, कई उत्साह बढ़ाते, कई खुशी को लाते हैं, कई हमें प्रेरणा देते हैं, कई आंतरिक शक्ति को जगाते हैं, कई आत्मविश्वास को जगाते, ऐसे बहुत सारे गीत हैं। और चूंकि आज हमारा ये सेशन एक बहुत ही अच्छा सेशन है, तो मैं जरूर चाहूंगी कि मैं जो मुझे एक गीत बहुत पसंद है वो गीत जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, कि उस गीत को सुनने के बाद अगर किसी भी तरह की उदासी, मायूसी या कोई भी बात है, उस परिस्थिति से बाहर आने में वो गीत हमें बहुत मदद करता है। और जो परिस्थितियां आती, निश्चित रूप से हम परिवार समाज में जो लोग रहते हैं उन्हीं के बीच में बातें आती हैं, उन बातों को हम कैसे पार कर सकते, ये गीत हमें सिखाएगा भी, प्रेरणा भी देगा और हमें खुशी भी देगा। मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे नितिन भाई को। आप विगत 10 वर्षों से हमारा ज्ञान सरोवर, जो ऊपर आप जाएंगे घूमने के लिए, वो हमारा कैंपस, वहां पर आप सेवाएं देते हैं समर्पित रूप में, और आपको ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन और कला है, जिस कला को भी आप अभी यहाँ देखेंगे इस गीत का माध्यम से। तो आप सभी इस गीत को एंजॉय करेंगे, सीरियसली नहीं सुनेंगे, एंजॉय करना है सभी को। इस गीत के एक एक शब्द को सुनना है और उसके भाव को अपने अंदर लाने का प्रयास करना है।
प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
खड़े भी हो सकते हैं, खड़े होकर ताली बजाएंगे, सभी खड़े हो जाइए।
जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है,
सब लोग साथ में गाइए, सब लोग साथ में गाइए।
पड़ेगा
पूरे दिल के साथ और उमंग और उत्साह के साथ सभी गाएंगे।
Thank you. एक वचन भी तो है जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
बैठ जाएंगे सभी वंस मोर बाद में क्योंकि नितिन भाई से हमें दूसरा गीत भी सुनना है, और भी बहुत अच्छे अच्छे गीत अभी सुनेंगे हम। इस गीत को आप सभी ने सुना, गीत ने हमें क्या सिखाया? गीत को तो बहुत सुना, झूमे भी, तालियां भी बजाई, लेकिन इस गीत ने हमें प्रेरणा क्या दी? जी थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा, नेवर गिव अप एनीथिंग, फाइट फॉर एवरीथिंग। और एक लाइन में, एक शब्द में बताइए, जो भी परिस्थितियां आए सब पार हो जाएंगे, एक शब्द में, हैप्पी। और एक शब्द पहला, जिंदगी प्यार का गीत है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, हम किसी आइलैंड पे नहीं रहते हैं, सामाजिक प्राणी समाज में, परिवार में रहते हैं। तो परिवार माना ही मित्र, संबंधी, सगे संबंधी सभी आ गए, और इन सबके साथ रहते हैं। घर परिवार में रहते ही उस जॉय को हमें अनुभव करना है, खुशी को अनुभव करना है। तो उसका पहला मंत्र इस गीत ने हमें सिखाया कि अगर परिवार समाज में रहते आपको खुश रहना है तो क्या करना होगा? प्यार करना सीखना होगा। जिंदगी प्यार का गीत है और इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। प्यार, प्यार शब्द, ये प्रेम शब्द है छोटा सा, लेकिन है बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर। अगर प्यार आपस में हम सभी का परिवार में हो जाए तो वह परिवार स्वतः ही क्या बन जाएगा? एक खुशनुमा परिवार बन जाएगा, एक जॉयफुल परिवार बन जाएगा। और अगर हम सब चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा समाज ऐसा खुशियों से भरा हुआ हो, तो हमें इस प्रेम को अपने दिल में जगह देनी होगी। और प्रेम कहने में तो बहुत ही मीठा और प्यारा शब्द है, लेकिन हमारा आपसी प्यार कब होगा? क्या बोल देने से प्यार हो जाएगा? हमने आपको बोल दिया हमारा आपसे बहुत प्यार है, लेकिन क्या वो सचमुच प्यार है? वो सच्चा प्यार कब होगा आपस में? जिस पर मन लगेगा। और मन कहां लगेगा? एक दूसरे पे विश्वास हो। विश्वास कब होगा? आत्मा परमात्मा की बात तो बहुत ऊंची है, हम आगे जाएंगे उस पर, अभी तो पहले हम नीचे रहे, नीचे में थोड़ा सा एक दो से प्यार बढ़ाए। जब हम एक दो के लिए कुछ करेंगे, यानी जब एक दो की विशेषताओं को आप देखेंगे, हम कहते हैं कि भगवान का ये बगीचा, ये संसार खुदा का बगीचा है, और इसमें हर इंसान अपने आप में एक फूल है, और हर फूल की अपनी अपनी कोई ना कोई खासियत, कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए संसार में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, बेकार कोई भी नहीं है। अक्सर करके हम क्या कहते, कह रहे ये नहीं हो ना तो शांति हो जाए। हमारे घर का एक सदस्य ये अगर कहीं चला जाए या ये परिवर्तन हो जाए तो सब सुखी हो जाए। ऑफिस में बॉस अगर ट्रांसफर होके चला जाए तो शांति हो जाए। या ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है, आवश्यकता है उनकी विशेषताओं को देखने की। और आप जब विशेषताएं देखने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्यार और स्नेह बढ़ता जाएगा, और जहां प्यार होगा वहां खुशी होगी। तो देर किस बात की? आप कुछ भाई बहने तो परिवार के साथ आए हुए हैं, कुछ अकेले आए, परिवार नहीं भी आया किसी का साथ में, लेकिन आज हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे. कौन कौन चाहता है कि हमारे परिवार में खुशी हो? हाथ उठाए. सभी चाहते हैं, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा. तो आप सभी को एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है. आप सभी को डायरी पेन मिली है कल सौगात में? मिली है सभी को? तो निकालिए अपना डायरी पेन, बाहर निकालिए. आपको खुशी का राज एक छोटी सी एक्सरसाइज करा रहे हैं. और आज के इस सेशन के लिए एक नया पेज ओपन कर लीजिए. उसमें निकाल ली सभी ने डायरी? अगर किसी के पास नहीं है तो किसी बाजू वाले से एक पेपर लीजिए, लेकिन ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए. अब उस पेज के ऊपर पहली लाइन में आपके परिवार का जो सबसे नजदीक आपका व्यक्ति है उसका नाम लिखिए. चाहे वो मां हो सकती, पिता हो सकते, हस्बैंड वाइफ बच्चा कोई भी हो, उसका नाम लिखिए. लिखा सभी ने? एक लाइन छोड़ के दूसरे सदस्य का नाम लिखिए. हो सकता है आपके परिवार में चार पांच सदस्य हो, आपको कम से कम तीन सदस्यों के नाम लिखने, एक एक लाइन छोड़ के. तीन सदस्यों के नाम लिखिए. लिखा सभी ने? किस किस ने लिखा, हाथ उठाए? बस थोड़े से लोगों ने, बाकी सब लिख रहे हैं. लिखिए लिखिए, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं. उसके बाद आपके किसी एक पड़ोसी का नाम, एक लाइन छोड़ के आपके पड़ोसी जो है उनमें से किसी एक का नाम लिखिए. छोटे शहरों में तो पड़ोसी को जानते, बड़े शहरों में तो यह भी नहीं पता होगा कि पड़ोस में कौन रहता है. पड़ोसी का नाम लिखा. उसके नीचे अगर आप ऑफिस में कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके अंडर जो काम कर रहे हैं आपके साथ में, उनमें से किसी एक का नाम लिखिए. और आपके हेड जो आपके बॉस है उनका नाम लिखिए. लिख लिए सभी के नाम? अब आपको मैं दो मिनट का टाइम दे रही हूं. आप सोचेंगे पता नहीं इन नाम के साथ क्या करना है, कुछ जादू मंत्र करना है इनके साथ. ये सभी नाम आपने लिखे. अब इन सभी नामों के आगे उन सभी की एक एक विशेषता आपको लिखनी है. आप कहेंगे तो इतना भारी काम दे दिया हमको. उनकी कोई भी एक क्वालिटी, कोई भी एक विशेषता आपको उसके नाम के आगे नोट करनी है. देखिए कितना टाइम लगता है आपको. सोचिए, सोच कर लिखिएगा. अगर आप एक लिख सकते हैं, दो विशेषता लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, तीन लिख सकते हैं तो और बहुत अच्छा है. मुश्किल लग रहा है या आसान है? आसान है. लिखिए. किस किसने कंप्लीट कर लिया, थोड़ा हाथ उठाए. अरे वाह, काफी सारे हैं. जिन्होंने नहीं किया कंप्लीट कीजिए. विशेषता लिखने में थोड़ा वक्त लग रहा है. अगर उनकी कमियां लिखने के लिए बोलते तो शायद एक एक पेज भी कम पड़ जाता ना. नोट किया सभी ने? सभी का हो गया? थोड़ा हाथ उठाएंगे जिनका हो गया. काफी सारे भाई बहनों ने कर लिया. जिन्होंने नहीं किया करते रहिए उसको. और अगर अभी याद नहीं आ रहा है तो आज रात को जब रूम में जाएंगे ना तब याद करके उनको लिखिएगा. और जिन्होंने लिख लिया उनके लिए दूसरे जो उनके पास में बैठे वो ताली बजाइए। और देखिए इस पेज को अपनी डायरी में संभाल के रखिएगा, अगर आपने किसी पेपर पे लिखा है तो जरूर अपनी जेब में संभाल के रखिए। आपने अपने परिवार के सदस्यों की उन विशेषताओं को लिखा है, जब आप वापिस जाएंगे यहां से तो अगर आपको परिवार में खुशहाली चाहिए तो आप उन परिवार के सदस्यों की उन विशेषताओं के आधार पर उनको देखेंगे, उनसे उसी विशेषता उस क्वालिटी के आधार पर व्यवहार करेंगे। तो आप ही बताइए कि आपका व्यवहार उनके साथ लेन देन कैसा होगा, प्यार भरा होगा। और जब आपका सबका आपस में प्यार होगा तो आपके परिवार में क्या होगा, खुशहाली होगी। जोर से नहीं बोल रहे हैं, क्या होगा, खुशहाली होगी। तो आप सभी को वापस लौटकर अपने परिवार में खुशियों का अनुभव करने की अभी से मैं बधाई दे देती हूं।
तो आप सभी ने सुना कि यदि हमारा आपस में प्यार होगा तो प्यार से खुशी होगी। और वास्तव में जब हम जीवन जी रहे हैं हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली हो। लेकिन कई सारी आश्चर्यजनक बातें जो हमें सुनने और देखने में आती ही रहती हैं, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ऐसे 3 देशों के नाम बताएंगे जहां पे लोगों का इनकम, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है या सबसे ज्यादा है। ऐसे 3 देशों का नाम आप बताएंगे जहां पे लोगों का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। हाँ जी, न्यूयॉर्क जी, कुवैत, ओके, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, स्वीडन, हाँ जी, अमेरिका, इंडिया, ओके ओके। सर्वे की रिपोर्ट ये बताती है वो 3 देश जहां पे लोगों के पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है वो है यूएस, जापान और स्वीडन। फाइन। अब दूसरा प्रश्न आपसे ये है, ऐसे 3 देशों के नाम आप बताइए जहां पे सुइसाइडल रेट हाईएस्ट है, जहां पे सबसे ज्यादा संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पाकिस्तान, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। यूएस, जापान जी, कुवैत, सेम, कई कह रहे इंडिया। वास्तव में आश्चर्यजनक बात तो ये है, इंडिया बीच में, आश्चर्यजनक बात तो ये है कि सबसे ज्यादा सुइसाइडल रेट जिन देशों में है उन देशों का नाम है यूएस, जापान एंड स्वीडन। अब मेरा आपसे तीसरा प्रश्न है, ऐसे 3 देशों के नाम आप बताइए जहां सबसे ज्यादा साइकियाट्रिक पेशेंट्स हैं, यानी सबसे ज्यादा लोगों में पागलपना नजर आ रहा है। हाँ जी, यूएस, जापान एंड स्वीडन। आई होप द आंसर इज ऑब्वियस टू अस, ऑब्वियस टू ऑल ऑफ यू। वो देश जहां पे सबसे अधिक लोगों में पागलपना नजर आ रहा है वो भी यूएस, जापान और स्वीडन ही है। अब प्रश्न ये उठता है, ये 3 देश ऐसे देश हैं जहां पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, बहुत हाई है, लोगों के पास कंफर्ट्स के साधन हर कुछ उपलब्ध है, लोगों के पास पैसा है, शोहरत है, गाड़ियां हैं और अच्छे अच्छे बंगले भी हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा लोग लोगों में पागलपना क्यों नजर आ रहा है और अधिक से अधिक लोग सुइसाइडल अटेम्प्ट क्यों ले रहे हैं. व्हाट इज मिसिंग, व्हाट इज मिसिंग, पीस इज मिसिंग, हाँ जी, लव इज मिसिंग, ओके, पीस इज मिसिंग, हैप्पीनेस इज मिसिंग, लव इज मिसिंग, बिल्कुल, हाँ जी, मोरल वैल्यूज आर मिसिंग, ओके, लॉनलीनेस, वहां लोग काम के पीछे भले ही भागते रह रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो फैमिली फीलिंग है, मेरे समझ में वो फैमिली फीलिंग आपको भारत से बाहर कहीं और देखने को मिलेगी ही नहीं. उन लोगों से पूछा गया कि आप लोगों के पास इतना सब कुछ होते हुए भी, जो लोग सुइसाइडल अटेम्प्ट ले रहे हैं, जिन लोगों में कहीं न कहीं पागलपना नजर आ रहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वी हैव ऑल मीन्स टू लिव, वी हैव ऑल मीन्स टू लिव, बट वी डू नॉट फाइंड एनी मीनिंग इन लिविंग. हमारे पास जीवन जीने के हर एक साधन तो है, परंतु जिए तो क्यों जिए, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है. और इसीलिए हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है कि जब तक जीवन में आध्यात्मिकता का स्पर्श नहीं हो, तब तक जीवन में सच्ची शांति, आपसी प्यार और असली खुशी की अनुभूति हम नहीं कर सकते हैं, और जीवन जीने का जो असली मकसद है वो भी हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं. मैं आपको एक बात सुनाना चाहती हूं कि आज का मानव डिप्रेशन और टेंशन में जी रहा है. आप में से ऐसे कोई बैठे हैं जो कहें कि बैन मुझे टेंशन है ही नहीं, टेंशन क्या चीज है मैं जानता ही नहीं हूं. यस प्लीज, वो हाथ ऊंचा करें जो ये कहे कि टेंशन क्या है मैं नहीं जानता हूं. हाँ जी, हाथ ऊंचा करें. ओके ओके, तीन चार लोग हाथ ऊंचा कर रहे हैं कि वी नेवर नो व्हाट इज टेंशन. अब ये कितना रियलिटी है मैं नहीं जानती हूं. अगर आप सचमुच वो टेंशन फ्री
यहाँ आके वो टेंशन भूल गए हैं अपना सभी, इसलिए हाथ उठा रहे हैं.
माधुरी बहन कह रही है कि यहाँ आके टेंशन भूल गए, या वहां भी नहीं है, क्या है सच्चाई, क्या है हकीकत, क्या है. हाँ जी, यहाँ आके भूल गए, फाइन फाइन. तो सच्चाई तो आज डेट क्या है, डे क्या है, वो भी नहीं याद है. सच्चाई तो ये है कि आज का हर मानव टेंशन में जीवन जी रहा है. इसलिए कहा जाता टू टॉम, यानी बच्चा गर्भ से लेकर व्यक्ति स्मशान घाट तक पहुंचने तक एक रीति से किसी न किसी प्रकार से टेंशन में गुजर रहा है. एक सेठ जी थे, उसने अपने मुनीब को बुलाया, अकाउंटेंट को बुलाया, और उनसे पूछा कि मेरी जितनी भी चल अचल संपत्ति है हिसाब लगा के बताओ कि मेरी संपत्ति कितनी है. तो अकाउंटेंट ने हिसाब लगाया और हिसाब लगाकर बताया कि साहब आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी सात पीढ़ी भी बैठकर खा सकती है. क्या बताया, क्या बताया, कि आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी सात पीढ़ी भी बैठकर खा सकती है. अब सेठ को चिंता हो गई कि मेरी आठवीं पीढ़ी का क्या होगा. इसीलिए कई बार ये समझ में आता है कि बहुत सी ऐसी बातें जीवन में होती हैं जिन बातों में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, परंतु हम टेंशन लेने के आदि बन चुके हैं. इसीलिए किसी ने खूब कहा कि तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव होता है तनाव के ना होने पर. तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव होता है तनाव के ना होने पर. और अक्सर तनाव का कारण पूछा जाता है तो लोग ये कहते हैं कि भविष्य को लेकर हमें चिंता होती है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, मेरा बच्चा यदि उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं किया तो मैंने जो जॉब ले रखा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, अगर उसमें मेरे बॉस के मुताबिक उसके एक्सपेक्टेशंस को मैं फुलफिल नहीं कर पाऊं तो आदि आदि। लेकिन आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि बजाय कि हम भविष्य की चिंता करें, यदि हम वर्तमान पे फोकस करें, वर्तमान का ही फल हमें भविष्य में प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए यदि हम वर्तमान को अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा बन ही जाएगा। चलिए इसी थीम पर एक बहुत सुंदर,
मुझे अस्मितन ऐसा लगता है कि भले वहां से चिंताएं लेकर आए हैं ये लोग, लेकिन यहाँ आकर सब चिंताएं छोड़ने के लिए तैयार हैं। सभी तैयार हैं? तैयार है तो आज सारी चिंताएं छोड़ देंगे, सभी भविष्य की कोई चिंता नहीं करेंगे। देखिए भगवान हमें सिखाता है चिंतन करो, चिंता नहीं करो। हम चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। तो हमें अपनी चिंताओं को छोड़ना है, चिंतन को नहीं छोड़ना है। माना कर्म करना है लेकिन अपनी चिंताओं को हमें छोड़ना है। तो आप सभी तैयार हैं? तो एक बहुत सुंदर गीत के साथ हम सभी एंजॉय करेंगे और अंदर की सारी चिंताएं, सारे टेंशन आज हम छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ेंगे सभी? ये गीत आप सभी ने सुना होगा, इस गीत को दोहराएंगे और आज कल की सारी चिंताओं को हम सब मिटा देंगे।
सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, किसका है नाम जिंदगी। साथ है हम सब इससे बड़ी क्या खुशी, कोई न जाने कब आ जाए घड़ी बिछड़ जाने की। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा,
कल के लिए आज को न खोना, क्योंकि आज ये कल नहीं आने वाला है। लेकिन आज वर्तमान समय हम देखते हैं, हम अपने सेवा केंद्रों पर रहते हैं, लोगों को टेंशन भी बहुत है। लेकिन वर्तमान समय जो यूथ है, युवा है, मैक्सिमम वो आश्रम पर आते हैं काफी सारे, और अधिकतर को हम देखते हैं कि वो सभी डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं। उन्हें भविष्य की चिंता नहीं है, टेंशन भी नहीं है, परंतु डिप्रेशन बहुत है। जब छोटे छोटे बच्चों को 15 साल, 16 साल, 20 साल के इस उम्र के युवाओं को, जिस समय वो जिंदगी सवारने का समय है, उस समय उन्हें डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हुए और अपनी सारी स्माइल, अपनी खुशी को खोए हुए देखते हैं तो बहुत तरस आता है और चिंता होती है कि हमारे भारत का ही नहीं, इस विश्व का भविष्य क्या होगा। और ये चिंताएं, ये डिप्रेशन क्यों? कुछ घटनाएं, कुछ बातें जो उनके साथ घट गई हैं, कुछ छोटी छोटी बातें जिसको बहुत बड़ा इश्यू बना लिया है उन्होंने, उन बातों को भूल नहीं पाते हैं। वो बातें बार बार याद करते, बार बार उनको याद करके उन बातों के स्मृति से डिप्रेशन में चले जाते हैं और इस हद तक पहुंचते हैं कि अब हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं किसी काम की नहीं हूं, मेरा भाग्य ठीक नहीं है, भगवान ने मुझे फालतू ही इस धरती पर भेजा है और मेरे जीने का अब कोई अर्थ नहीं है। यहां तक वो स्थिति आ पहुंची है। लेकिन परमात्मा पिता ने एक बहुत अच्छी चीज हमें सिखाई और यही चीज हम उन युवाओं को सिखाते और धीरे धीरे उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उनके मेडिसिन भी बंद हो जाती हैं। और वो चीज आज हम आपको भी बता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर ये बात आती है, जब हम दूसरे को देखते हैं कुछ अच्छा कार्य करते आगे बढ़ते हुए तो हमें लगता है कि शायद मेरे भाग्य में नहीं है या मैं ये नहीं कर सकता हूं, मुझ में एक क्षमता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ईश्वर ने हम सभी को इस धरती पर भेजा है तो कुछ विशेषताएं हर एक में कुछ खासियत भर के भेजा है। हम में से हर एक की अपनी अपनी विशेषता, अपनी अपनी क्वालिटी है। कई बार हम दूसरों की विशेषताओं को देखते लेकिन अपने आप को नहीं देख पाते। जो हमारे भारत भूषण भाई सुना रहे थे इनॉग्रल सेशन में कि सब बाहर की ओर भाग रहे हैं, आवश्यकता है अपने अंदर की ओर भागने की। हम बाहर की दुनिया देख रहे हैं, चकाचौंध देख रहे हैं, परिस्थितियों को देख रहे हैं, अब आवश्यकता है थोड़ा अपने अंदर जाने की, अपने अंदर झांकने की। और ईश्वर ने जो क्वालिटीज मुझ में भरी है, जो विशेषताएं मुझ में भरी है, उनको भी पहचानने की। तो दूसरी छोटी सी एक्सरसाइज हम फिर से करेंगे, डायरी पेन सभी निकाल लीजिए और उसमें बोल्ड लेटर में अपना नाम लिखिए। अंडरलाइन करके बिल्कुल बोल्ड लेटर में अपना खुद का नाम लिखिए, बहुत सुंदर तरीके से। लिखा सभी ने अपना नाम? खुद का नाम लिखने में तो देर नहीं लगेगी। एक मिनट के लिए अभी आंखें बंद करके सभी बिल्कुल डीप साइलेंस में बैठेंगे। डायरी पेन बंद कर दीजिए, डीप साइलेंस में जाइए और अपने आप को देखिए, मुझ में कौन सी क्वालिटी ईश्वर ने भरी है, कौन सा विशेष गुण, कौन सी विशेष शक्ति, कौन सी विशेष विशेषता ईश्वर ने मेरे अंदर भरी है। कोई ना कोई विशेषता है, सिर्फ मुझे उसे देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल साइलेंस और अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप को देखिए। दिखाई दे रही है अपनी विशेषता? जिन्होंने अपनी विशेषताओं को डिस्कवर कर लिया वो उसे डायरी में नोट कर लीजिए। अपने नाम के आगे अपनी क्वालिटी, वो अपनी विशेषता, जो भी खासियत आपके अंदर है उसको लिखिए। हो सकता है वो एक हो, दो हो, तीन हो, बहुत सारी हो, जो भी विशेषता आप लिख दीजिए अपने नाम के आगे। नोट किया सभी ने? लिखा सभी ने? हाथ उठाएंगे जिस जिसने लिख लिया, लिख रहे हैं अभी, थोड़ी सी देर के लिए पॉज दे रही हूं। नोट कीजिए सभी, नोट कीजिए। देखिए अपनी विशेषता लिखना बहुत जरूरी है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। अगर कोई लिख नहीं रहा है तो सोच लीजिए मन में कि मेरी क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है। अब आपके अंदर जो क्वालिटी, जो विशेषता है आपने नोट की, आपको छिपाने की जरूरत है? छिपाने की जरूरत है किसी से, बगल वाला देख न ले मुझे? यहाँ तो आपके परिचित ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको छिपाने की जरूरत नहीं है। तो आपके जो विशेषता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी वो विशेषता अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को शेयर कीजिए। दो दो के पेयर बनाइए, पहले तो दो दो के पेयर बनाकर अपनी जो भी क्वालिटी, जो भी विशेषता आप उसको शेयर कीजिए। ध्यान से सुनिएगा जो आपकी विशेषता सुना रहे उनको। आप सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सभी, और दो दो के पेयर में ही खड़े रहेंगे। जिसको आपने विशेषता सुनाई ना, वो पेयर में आमने सामने फेस कर लीजिए, या तो आगे पीछे भी कर लीजिए। जिसको भी आपने विशेषता सुनाई, अगल बगल, आगे पीछे, दो दो के पेयर में खड़े रहेंगे सभी। और देखिए, आपकी जो विशेषता है, अब उस विशेषता के आधार पर आपको एक दूसरे को परिचित होना है और उसी रूप में एक दूसरे को देना है। जैसे अस्मिता बहन है और मैं हूं, तो हम दोनों एक दो को अपनी विशेषता शेयर करेंगे और उसी आधार पर परिचय देंगे। जैसे मैं अस्मिता बहन को बता रही हूँ, मेरी विशेषता जो है स्वीटनेस।
मैं माधुरी बहन को बता रही हूँ, मेरी विशेषता है ऑनेस्टी, ईमानदारी।
ठीक है, तो अब देखिए हम परिचित कैसे होंगे। विशेषता सुना दी सबने, हम दोनों एक दो से परिचित होंगे। हेलो सिस्टर ऑनेस्टी, हाउ आर यू?
हेलो सिस्टर
स्वीटनेस,
हाउ आर यू?
आप परिचय कीजिए, आप एक दूसरे को उसी नाम से पुकारेंगे जो क्वालिटी, जो विशेषता आपने एक दो को सुनाई है। किया सभी ने एक दो से परिचय? अब थोड़ा मुड़ के आसपास सबको देखिए, सबके चेहरे देखिए, सबके चेहरे पर क्या दिखाई दे रहा है? खुशी और मुस्कुराहट। अगर मुस्कुराना है जिंदगी में तो क्या करो, अपनी विशेषताओं को भी देखो। अब एक दो जब मिलेंगे ना आपस में, अभी दो दिन तो मिलेंगे, तो उस विशेषता से जरूर पहचानिएगा उनको। नाम भले मत पूछिए, लेकिन विशेषता से जरूर एक दो से परिचित होंगे सभी। ओके, थैंक यू। बैठेंगे सभी और इस विशेषता को अब अपनी डायरी में हमेशा के लिए नोट करके रखेंगे। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये विशेषता आप किसकी है? किसकी है? मेरी विशेषता है। और हमें यहां सिखाया जाता है कि जब भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा, इतनी शक्ति दी है कि हम अपनी मुट्ठी में सारी धरती, सारा आकाश और भगवान को भी इस मुट्ठी के बंधन में बांध सकते हैं। मुझ में इतनी ताकत है कि भगवान को भी मैं अपने प्रेम के बंधन में, मुट्ठी में बांध सकती हूँ। क्या आपको इतना आत्मविश्वास है? है? जो कहते हैं हमको आत्मविश्वास है वो अपनी मुट्ठी बंद करें और ऊपर करें, ठीक है? तो अब मुट्ठी को बंद ही रखना, खोलना नहीं, लेकिन हाथ को नीचे रख लीजिए, सपोर्ट दे दीजिए, हाथ दुखे नहीं। आप सभी को एक संकल्प करना है, एक गीत छोटा सा यहां मैं बजा रही हूं। आप सभी आंखें बंद करके अपनी विशेषता को याद करेंगे और ये महसूस करेंगे कि अब ये विशेषता, यानी ये ताकत, ये एनर्जी मेरी अपनी क्षमता, मेरी ताकत है, और इस ताकत को अब मैं अपने जीवन काल में सदा यूज करूंगी, करूंगा, और इसके आधार पर जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ूंगा। तो अपनी मुट्ठी बंद रखेंगे सभी, सामने अपने रखे, भले दूसरे हाथ का सपोर्ट दे देंगे। और देखिए, मुट्ठी बंद माना दृढ़ प्रतिज्ञा, इसकी निशानी है। तो हम सब प्रतिज्ञा कर रहे हैं परमात्मा पिता से कि हे पिता, आपने जो क्वालिटी, जो विशेषता मुझ में भरी है, मैंने डिस्कवर किया, अब इस विशेषता को मैं बूंद से सागर बनाऊंगी। ठीक है, कर ली सभी ने मुट्ठी बंद? बिल्कुल साइलेंस में अपने आप को देखेंगे। और इस गीत के भाव को अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे पूरी शक्ति के साथ।
हमारी मुट्ठी में आकाश तारा, शक्ति खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा चित्त पहचान संसार धारा। हमारी मुट्ठी में आकाश तारा, शक्ति खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाए हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। समझना है उनको ये अपना कर्म है। अपने कर्म से दिखाना है सबको, खुद का पनपना उभरना है सबको। अंधेरा मिटाए जो नन्हा शरारा, दिखा दे पहचान संसार धारा।
तो दृढ़ संकल्प किया सभी ने, अब आपकी मुट्ठी में क्या है? क्या है मुट्ठी में? आकाश सिर्फ? मेरी मुट्ठी में तो धरती, आकाश और स्वयं भगवान और मेरा आत्मविश्वास बंद है। तो आपकी मुट्ठी में क्या है? सभी कहिए, धरती, आकाश, मेरा आत्मविश्वास और स्वयं भगवान मेरी मुट्ठी में है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब खुशी गायब हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है।
कहते हैं भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद खुद को मदद करते हैं। क्या सुना आपने? भगवान किसकी मदद करते हैं? भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद खुद को मदद करते हैं। अगर हमारा खुद पे विश्वास है, भगवान पर भरोसा है, तो कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो, हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते हैं। मुझे एक बहुत सुंदर सा उदाहरण याद आ रहा है। एक बार एक भक्त था, उसके साधना से प्रसन्न होकर भगवान जी प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं कि तू आज कुछ भी बर मांग, मैं देने को तैयार हूं। तो भक्त कहता है कि भगवान जी, मुझे सब कुछ जीवन में प्राप्त है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझ पर इतनी ही कृपा करो कि आप हरदम मेरे साथ रहना। और क्योंकि उसे भगवान का साथ प्राप्त हो जाता है, उसका जीवन कैसा हो गया होगा? उसका जीवन कैसा हो गया होगा? जिसको भगवान साथी के रूप में मिल जाए, उसका जीवन शांति, खुशहाली, प्रेम, सब कुछ से भरपूर होना ही था। बड़े प्रसन्न होकर जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ दिनों के बाद भगवान जी फिर से प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और तुम आज कुछ मांगना चाहते हो तो अवश्य मांगो। तो उसने कहा कि मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ है, यही मेरे लिए काफी है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि मेरा आपके साथ जो सुखद पल बीते हुए हैं, मैं उसको दोबारा एक बार देखना चाहता हूं। तो भगवान के साथ बीते हुए पल उसके सामने वीडियो की तरह फ्लैश होने लगते हैं। तो वो देखता है, बहुत हरियाली है, बहुत खुशहाली है, पहाड़ है, झरने है, बहुत 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 खुशहाली वाला जीवन वो अपना देख पाता है। और उस पहाड़ी और झरनों के बीच वो एक रास्ता देखता है और उसमें वो देखता है कि 4 फुटप्रिंट्स हैं, 2 लोगों का पद चिन्ह उन्हें नजर आता है और 2 लोगों का पद चिन्ह देखकर वो सोचता है कि एक कदम मेरा, एक पद चिन्ह मेरा और दूसरा भगवान का। उसे यकीन हो जाता है कि इतने दिनों के अंदर भगवान मेरा साथी था। पर सीन आगे बढ़ती है, वो देखता है कि चलते चलते वो एक मरुस्थल में पहुंचता है जहां पे आंधी और तूफान है और वो बालू के बीच पद चिन्ह को गौर से देखता है तो उसे नजर आते हैं केवल 2 ही पद चिन्ह उन्हें नजर आते हैं, माना एक ही व्यक्ति के पद चिन्ह उन्हें नजर आते हैं। तो वो भगवान जी से प्रश्न करता है कि हे भगवान, जब मेरे जीवन में खुशहाली थी, मेरे पास सब कुछ था, मैं मौज में था, तब तो आप मेरे साथ रहे, लेकिन ये क्या, जब मुझ पे मुसीबत आई, जब मुझ पे तकलीफ आई, तब आप कहां गायब हो गए। भगवान जी ने क्या कहा? भगवान जी ने कहा कि वो जो तुम एक व्यक्ति के पद चिन्ह देख रहे हो, उसे थोड़ा गौर से देखो कि वो किसके थे। व्यक्ति गौर से देखता है और उसे समझ में आता है कि वो पद चिन्ह स्वयं भगवान के थे। पर फिर वो व्यक्ति भगवान से प्रश्न पूछता है कि सफर तो मेरी थी, यात्रा तो मेरी थी, अगर वो पद चिन्ह आपके थे तो फिर मैं कहां था। भगवान कहते हैं, तुम्हारे मुसीबत के समय थे, इसीलिए तुम तो मेरे गोद में थे, मैं तुम्हें अपने गोद पर लिए चल रहा था। भाइयों और बहनों, यदि हम भगवान को अपना साथी बना लें तो ये हमारा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव रहा है कि जीवन में कैसी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाएं, लेकिन जीवन का सफर हम बहुत सहजता से, बहुत आसानी से तय कर सकते हैं। और इसी बात पर हम एक बहुत सुंदर सा गीत आपको सुनवाना चाहेंगे। यूएसए से हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी। आप सभी ने इनका टॉक सुना कल रिसेप्शन सेशन में, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि एक बहुत प्रेरणादायी गीत आपको सुनाएंगे जिसके शब्द हैं, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। सौरभ भाई, सभी गौर से गीत को सुनेंगे कि इनके शब्द बहुत अच्छे हैं और उसे अंदर ही अंदर उन शब्दों के भाव को भरने की कोशिश करेंगे।
दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, तुमने दिया है संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता बचा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है फिर हमको डरने की क्या बात है, कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, गले से हमें भी लगा लोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है, हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। थैंक यू।
सौरभ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से जब आपके द्वारा गीत सुन रही थी, मुझे आज दोनों हमारी परम श्रद्धे आदरणीय दादियों की बातें याद आ रही थी। इनॉग्रल सेशन में दादियां हमारे बीच थी। आदरणीय हृदय मोहिनी दादी जी ने एक ही बात बार बार कही कि हिम्मत का एक कदम आपका और आगे, जोर से बोलिए, मदद के 100 कदम परमात्मा के। दादी ने कहा हम छोटे छोटे आए, भगवान को पहचाना, जीवन दिया और तब से लेकर अब तक 78 वर्षों से उसी खुशी और उसी उमंग के साथ अपनी जीवन से सारे विश्व को प्रेरणा दे रही हैं। और जानकी दादी जी ने एक बात बार बार दादी जी के मुख से निकल रही थी, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा यानी परमात्मा, पिता, भगवान। ये वो महान आत्माएं हैं जो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने लाइफ को रीडिस्कवर किया और अपनी पूरी लाइफ को, जीवन को परिवर्तन कर सारे विश्व को परिवर्तन का एक मार्ग दिखाया। लेकिन ये परिवर्तन या ये डिस्कवर किस आधार पर किया? उन्होंने मन, बुद्धि, दिल, दिमाग, सब कुछ किसके हाथ में सौंपा? उस परमात्मा पिता के हाथ में। आदरणीय दादी जानकी जी हमेशा एक बात कहती हैं कि मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं सिर्फ, बजाने वाला तो वो है, चलाने वाला वो है, वो तो सुप्रीम है, तो इंस्ट्रूमेंट कैसा भी हो वो तो इसे चला ही लेगा। बुद्धि का समर्पण। और इसलिए वो पूरी अथॉरिटी के साथ कहती हैं कि जब से परमात्मा पिता के बने तब से लेकर आज तक कभी भी जीवन से खुशी गायब नहीं हुई, परंतु वो खुशी निरंतर बढ़ती गई, बढ़ती गई। कारण, उस खुशी के सोर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया, उसमें समा गए, जो सागर है खुशियों का, आनंद का, सुख का। और आज हम सबको भी प्रेरणा दी कि हम सब भी उसके बच्चे हैं। हम यहां कोई भी मेहमान नहीं है। आप में से कोई मेहमान है अब यहां पे? है कोई इस विंग के कॉन्फ्रेंस में आए हुए मेहमान? जरा हाथ उठाए। कोई नहीं है। और बच्चे कौन कौन है? बच्चे तो सभी हैं। तो आप सब बच्चे हैं। और कौन से बच्चे हैं? दादी जी ने कहा आप सब उनके लाडले और विशेष विशेष बच्चे हैं। तो आप सब अपने आप को शाबाशी तो दो। कोई शाबाशी दे ना दे, खुद को शाबाशी दो कि मैं उस भगवान का, जो खुशियों का सागर है, उस भगवान का बच्चा हूं। और इसलिए बच्चा होने के नाते मैं उस खुशियों का अधिकारी हूं। तो आज इस सेशन के लास्ट में हम सब एक संकल्प करें, दृढ़ संकल्प, कि अब ये जीवन जो भगवान ने दिया है वो तो संभालेगा ही, लेकिन पहले मैं सरेंडर तो करूं। डोर उसके हाथ में दे तब तो वो इसे संभालेगा। डोर हाथ में रखी और उससे कहते कि संभालो तुम, तो कैसे संभालेगा? तो आज हम सब क्या करेंगे? वो परमात्मा पिता आप सबको अपनी बाहों में बुला रहा है, आपका आह्वान कर रहा है सिर्फ उसकी बाहों में समाने के और उससे अपने संबंध को जोड़ने के नहीं, परंतु दिल से मजबूत करने की आवश्यकता है। तो मैं नितिन भाई को पुनः आमंत्रित कर रही हूं इस गीत में। हम सभी पहले ताली बजा लीजिए नितिन भाई के लिए, क्योंकि इस गीत में हम सभी ताली नहीं बजाएंगे बल्कि खुशियों की मन में ताली बजाना है। कौन सी? हम सभी बिल्कुल शांत एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे और परमात्मा पिता वो सागर अपनी बाहों में बुला रहा है, हमें उसकी बाहों में समाना है। तो हम अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा पिता के साथ जोड़ेंगे। आज हम सारी चिंताएं, अपनी सारी समस्याएं, सारी तकलीफें आज उनको समर्पित कर देंगे और बदले में क्या लेंगे? खुशियों का सागर। पहले देना होगा तब मिलेगा। तो देने के लिए तैयार है? कौन कौन तैयार है? तो ये जो 3 मिनट का गीत हम सुनेंगे, आप आनंद भी जरूर लीजिए, लेकिन एक संकल्प कीजिए कि हम भगवान के घर में, अपने घर में आए हैं, वो हमसे मांग रहा है, हम सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, उलझने, समस्या आज उसे सौंप रहे और उससे खुशी के सागर से जुड़कर, खुशियों से संपन्न बनकर हम यहां से जाएंगे।
कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। प्यार का कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, लो अनुभव प्रभु प्यार का। आँख खुली तो कुछ घड़ियां कर प्रभु के नाम, सुबह सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियां कर प्रभु के नाम प्रभु किरण को हृदय में भर लो कर लो आनन दिव्य ललाम प्रभु किरण को हृदय में भर लो कर लो आनन दिव्य ललाम महामिलन की मंगल वेला महामिलन की मंगल वेला प्रभु मिलन जग मना रहा वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा स्नेह में सबको समा रहा आओ प्रभु शरण आओ पवन ये खिला चमन ये दिन और ये दिन मान मिला ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला ईश्वर का वरदान मिला सफल करो और पाओ सफलता सफल करो और पाओ सफलता मुरली मधुर वो सुना रहा वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा स्नेह में सबको समा रहा आओ प्रभु शरण आओ